हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 25। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सूत गोस्वामी भगवान के 22वें अवतार के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, अथासौ युग संध्यायाम् दस्युग्रायेषु राजसु जनितावेषु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पते। अथासौ युग संध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनितावेषु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पते। अथासौ युग संध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनितावेषु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पते। अथासौ युग संध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनितावेषु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पतिः। अथासौ युग संध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनितावेषु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पतिः। अथासौ युग संध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनितावेषु यशसो नाम्ना कल्के जगत्पतिः। शब्दों का अर्थ, अथासौ युग संध्यायाम्, अथा मना तत्पश्चात यानी बुद्ध के बाद, असौ वही भगवान यानी वही भगवान की बात कर रहा हूँ मैं, कृष्ण जो भगवान है जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना, वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया, कि वही भगवान वासुदेव उसके पश्चात युग संध्यायाम यानी युग के बीच में दस्यु प्रायेषु राजसु। दस्यु का मतलब होता है लुटेरे, जो लुटते हैं सबको। प्रायेषु यानी प्रायेषु का मतलब होता है 90%, 95%, 99%, जैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है ना, तो बोलते हैं प्रायेषु, तकरीबन सारे। राजसु अर्थात शासक, जनिता यानी जन्म लेगा, विष्णु अर्थात विष्णु नामक यशसह, यशा का मतलब होता है उपाधि युक्त, नामना कल्किर, नाम से कल्किर यानी भगवान का अवतार, जगतपति जगत के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, तत्पश्चात दो युगों के संधि काल में भगवान कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विश्व यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें दो युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सत्ययुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली इन चार युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल्कि अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता विद्वान ब्राह्मण विश्वयशा होंगे और उनका ग्राम संबल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलादरोष्ठा पुलेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदि कायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज सूत गोस्वामी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब कलयुग के अंत में एक और अवतार होगा, यानी संध्यायाम का क्या मतलब होता है, युग संध्या। देखो हर युग की तीन संध्या होती है, इसको एक को प्रथम संध्या कहते हैं और दूसरा द्वितीय संध्या और अंतिम संध्या होती है, उसके बाद उसको तृतीय संध्या बोलते हैं। तो कहते हैं अथासो युग संध्यायाम दस प्रायेश राजसा। दस्यु प्रायेशु, दस्यु का मतलब होता है सब लुटेरे बन जाएंगे। लुटेरे बन जाएंगे मतलब क्या होगा कि सारे जितने भी राजा होंगे ना वो सब चोर बन जाएंगे। कैसे? अपनी प्रजा को लूट कर भोग करना, बस उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होगा कि कैसे हम अपनी प्रजा को शोषण करें, कैसे उनको लूटें, कैसे उनको हानि पहुंचाएं और स्वयं अपना इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कोई उनका लक्ष्य नहीं होगा। सब लोग जो है वो इतने प्रजा जो होगी वो इतनी राजाओं के जो राजा होंगे ना, जैसे जो भी है ना मुख्य होते हैं जैसे प्रेसिडेंट इत्यादि जितने भी होंगे, तो वो लोग आम प्रजा को इतना दुखी करेंगे कि सब लोग शहर और गांव को छोड़कर जंगलों में आश्रय प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रक्षक हैं, जो ऐसी बात है प्रेसिडेंट और ये जो सब राजा इत्यादि क्या होते हैं, वो प्रजा की रक्षा करने के लिए होंगे, परंतु ये रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे कि कैसे हम इस प्रजा को लूट सकें, कैसे उनकी धन उनकी इज्जत इस सबको लूटने के लिए वो सदैव है ना यही कार्य करने के। तो फिर क्या करेगी प्रजा बिचारी, इनसे बचने के लिए, अपने इन तथाकथित रक्षकों से बचने के लिए जंगलों और पहाड़ों में जाकर आश्रय लेना शुरू कर देगी। और श्री प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि इस कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और जिसमें से 5,000 साल गुजर चुके हैं और अभी भी 4,27,000 वर्ष तक भुगतना है हम इस कलयुग को। और जैसा कि शास्त्रों में भविष्यवाणी की जाती है कि इस कलयुग घोर कलयुग के अंदर एक स्वर्ण युग आएगा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जिसमें भगवान को प्राप्त करना अत्यंत ही सरल हो जाएगा। कलय दोषे निधे याद यस्ति एको महान गुण, एक ही महान गुण है क्या, कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संगे परम रजत। यदि हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं तो मुक्त संग जितने भी अपराध हैं उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अत्यंत ही सरल उपाय और बुद्धिमानता ये है कि शीघ्रातिशीघ्र हम इस भगवान के पवित्र नाम का, भगवान की पवित्र लीलाओं का, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेकर इस भयानक कलयुग के आने से पहले ही हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हुए कृष्ण प्राप्ति का प्रयास करें, क्योंकि अगर इस जन्म में हम मुक्त नहीं होते हैं, कृष्ण को प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर न जाने दूसरा जब जन्म होगा वो कैसा समय होगा। क्योंकि जैसे भक्त हैं, अगर भक्त मानो भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक में, जैसे हमारे पृथ्वी लोक में 6 महीने होते हैं, तो स्वर्ग लोक का 1 दिन होता है। तो अगर कोई भक्त स्वर्ग लोक में चला जाता है और इतना 1000 साल भी रहता है, तो कितने सारे यहाँ पर तो कितने सारे समय बीत जाएगा, और ये 10,000 साल तो समाप्त हो जाएंगे। और अगर भगवान न करे किसी भक्त को ब्रह्मलोक में जाना पड़े, और वहां पर ब्रह्मलोक में यदि वो जाता है, तो ब्रह्मलोक में तो 1 क्षण बीतता है और हमारे यहाँ पर कई कल्प बीत जाते हैं, ना जाने कब पैदा होंगे फिर। और अगर उस भयानक कलयुग में हम पैदा हुए, मतलब ब्रह्मलोक में थोड़ा सा समय और यहाँ पर कई 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तो फिर ना अगर हमने जन्म लिया और वही कलयुग भयानक कलयुग होगा, तो कितना भयंकर है। तो बुद्धिमानता तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम का जप करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, और हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति को उत्पन्न करने का बृहस्पत प्रयास करें। जहां तक नहीं हो रही है, हृदय में भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो रो, भगवान के सामने रोना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, मैं करना चाहती हूँ भगवान, तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ, तुम्हारे निकट रहना चाहती हूँ, तुम्हारे विषय में सोचना चाहती हूँ, तुम्हारी कथा से, तुम्हारी लीला से, तुम्हारे नाम से प्रेम करना चाहती हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, कृपा करो। वैष्णव से कृपा की याचना करनी चाहिए, क्योंकि यदि अगर नहीं कर पाए इस जन्म में, तो ना जाने कौन से भयंकर युग में, कलयुग की कौन सी अवस्था होगी जिसमें हमारा जन्म होगा। और भगवान भी सोचेंगे कि स्वर्ण युग में तुम्हें पैदा किया, जिसमें कितना सरल है, न ध्यान करना है, न यज्ञ करना है, न उपासना करनी, केवल पवित्र नाम का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल इस महामंत्र का जप करना है और भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। बस ये 2 काम करके तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, और तुम ये भी नहीं कर सकते तो कितना भगवान को भी दुख होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए शीघ्र कृष्ण प्राप्ति करने के लिए। हम अपने समय, इस समय को ऐसे व्यवस्थित करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम श्रवण और कीर्तन को दे सके। ये हमारे शास्त्रों की प्रामाणिकता है कि भविष्य में होने वाले अवतार के विषय में भी वो 1000 साल पहले बता देते हैं, लेकिन शास्त्र को पढ़कर भी हमें बुद्धिमानी से कार्य करना है। ऐसा नहीं, अभी जैसे कलयुग की युग संध्या नहीं आई है, अभी वो समय नहीं आया है जब कलयुग बहुत ज्यादा घोर कलयुग होगा ना, तब कल की अवतार आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अभी से बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ। एक बार टीवी में एक एड आया और उसमें ये कहा गया कि देखिए, जो जो ये कहते हैं कि हम आप कल की अवतार हो, तो फिर वो आ जाइए और फिर हम ना देखना चाहते हैं कौन कौन कल की अवतार है। जब ऐसे एड दिया गया और फिर उनके लिए अनाउंसमेंट किया था इनाम वगैरह का, तो इतनी सारी भीड़ लग गई लोगों की। वो कह रहा था मैं कल की अवतार हूँ, वो कह रहा था मैं कल की अवतार हूँ, और साबित करने लगे अलग अलग तरीकों से कि हम कल की अवतार हैं। एक डिवोटी गए कुंभ मेला में, और कुंभ मेला में आप जानते हो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे अलग अलग ना वो पिंडाल लगे हुए होते हैं। तो एक पिंडाल लगा हुआ था, उसके बाहर लगा लिखा हुआ था ये कल्कि अवतार का पिंडाल है। तो एक डिवोटी थे, वो गए अंदर, भक्त ने जाके पूछा, प्रणाम किया, बोला आप कल्कि अवतार हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहा अच्छा आपकी माता का नाम सुमति है? बोला नहीं। बोला आपके पिताजी का नाम विष्णुयशा है? बोला नहीं। तो बोला आप संबल ग्राम में पैदा हुए? बोला नहीं। बोले लेकिन भागवतम में तो लिखा हुआ है कि माता का नाम सुमति होगा और है ना पिता का नाम विष्णु ऐसा होगा और संबल गांव में आपका जन्म होगा, तो आप पहले आप कैसे कह सकते हो कि आप कल्कि अवतार हो? तो उन्होंने कहा, अरे भक्त ने उन्हें ये भी कहा कि देखो आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि कल्कि अवतार तो कलयुग की अंतिम संध्या में होगा, जैसे एकदम कलयुग के एंड में होगा और अभी तो कलयुग को 5,000 साल बीते, कलयुग तो 4,32,000 साल का है, अभी तो 4,27,000 साल बाकी बचे और कहा गया है कि 900 वर्ष पहले आएंगे वो, तो उस समय भी कुछ इतना ही समय पहले आएंगे, 9 वर्ष पहले या इस तरह। तो फिर है ना बोला आप अभी से आए हो तो क्या अभी से ही प्रलय आएगी? तो कहने लगे नहीं, असल में मैं इतनी जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझसे लोगों का दुख नहीं देखा गया है, कलयुग के लोग इतने दुखी हैं तो इनका दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। मैं भगवान हूँ, मैं अपनी मर्जी से है ना आ सकता हूँ ना, मेरी जब मर्जी हो। तो ऐसा है कि लोगों को भ्रांत धारणाएं दी जाती हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी मर्जी से कहते हैं कि हम ये भगवान के अवतार हैं, हम ये भगवान के अवतार हैं, परंतु हमें शास्त्र से देखना पड़ेगा, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो हम कभी भी तथ्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी तो सूत गोस्वामी इन ऋषियों को बता रहे हैं भगवान के अवतारों के विषय में, जैसे अभी सूत गोस्वामी ने भगवान के 22 अवतारों के विषय में बताया, और आगे जब हम दूसरा स्कंद पढ़ेंगे तब ब्रह्मा जी नारद जी से कहेंगे भगवान के मुख्य 25 अवतारों के विषय में वर्णन करेंगे, और उनमें 25वां अवतार जो है वो कल्कि अवतार होगा, और ब्रह्मा जी स्कंद दूसरा स्कंद 7वां चैप्टर और श्लोक नंबर 2.7.38 में अत्यंत सुंदर तरीके से बताएंगे कि कलयुग में कल्कि अवतार किस प्रकार अवतार लेंगे और उनके आने का प्रयोजन क्या होगा। 2.7.38 में ब्रह्मा जी बताते हैं, यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरे कथास्यु पाषण्डिनो द्विजजन विशलानृदेवा स्वाहा स्वधा विषडिता स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कले भगवान युगंते। यर्ह्यालयेष्वपि सताम, यानी सताम का कहते भक्त को, लेकिन ऐसे भक्त जो भक्त भी होंगे ना, साधारण प्राणियों को छोड़ दो, जो भक्त कहलाएंगे वो भी सिर्फ तथाकथित भक्त होंगे, यानी कि रियलिटी में भक्ति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न हरे कथास्यु, किसी के घर में भी, आलयेषु मतलब किसी भी भक्त के घर में भी कभी भगवान की कथा नहीं होगी। भगवान की कथा होना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है विषडीति न गिरो न यत्र, यानी कि किसी के मुख से ऐसी बात भी नहीं निकलेगी कि भगवान की कथा के विषय में या भगवान के बारे में कोई ऐसी बात भी नहीं निकलेगी कि हमें भगवान की कथा करनी चाहिए। और पाषंडिनो द्विजजना, जितने भी द्विजजन हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शूद्र को छोड़ के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, जब वो लोग यज्ञोपवित होता है ना, फिर वो ब्राह्मण द्विज बनते हैं, तो द्विज कोई भी ऐसे नहीं होंगे, वो सब पाषंडी होंगे, सब पाषंडी होंगे, कोई भी वृषला मतलब सब शूद्र बन जाएंगे और शूद्र ही शासक बनेंगे। और उसके बाद क्या होगा, स्वाहा स्वधा, जितना भी स्वाहा, जैसे यज्ञ में क्या होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, होम यानी कि वो बनाया जाता है, अग्नि कुंड और सामग्री दी जाती है, तो वो सब स्वाहा सदा विषेडिटी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। यज्ञ किसी को भी करना ही नहीं पता होगा कि हमें यज्ञ भी करना है, सब अपराधी हो जाएंगे। किसी को भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ, उसके विषय में कुछ खबर भी नहीं होगी। फिर जब भगवान इतना संसार में दुष्व्यवहार देखेंगे सबका, फिर कहा शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते, फिर भगवान सबको युग अंते लिखा हुआ कि युग का जब अंत होगा यानी कि कलयुग का समाप्ति के समय वो पैदा होंगे, और शास्ता का मतलब होता है सजा देंगे, सबको दंड देंगे। भविष्यति वो बहुत भविष्य में आएगा, अभी ऐसा नहीं आएगा। भगवान का एक अवतार जिसका नाम कल्कि होगा, वो कलयुग के अंत समय में आएगा, और वो सब आगे क्या करेगा, शास्ता वो सबको दंड देगा, क्योंकि तकरीबन सब अपराधी होंगे, इतने अपराधी होंगे कि भगवान एक घोड़े पर सवार होके आएंगे और विदाउट मर्सी ऐसे अपनी तलवार को इतना तेज 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 घुमाएंगे कि सबकी गर्दनें कटती जाएंगी, और है ना सब, क्योंकि जो थोड़े बहुत अच्छे लोग होंगे वो तो वहां पर होंगे ही नहीं, वो तो कहीं पर छुपे बैठकर भगवान का नाम ले रहे होंगे। साधारण जगह पर कहीं पर भी आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पर है ना कोई पुण्यवान जीव है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि वो सब चलते फिरते शव दिखेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति नहीं हो, फिर भले वो कितना ही सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, उसके अंदर दूसरे कितने ही गुण क्यों ना हो, वो चलती फिरती एक लाश की तरह है। शास्त्र कहता है भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रं जतः तपः, अकारणस्योपदेहस्य मंडनं लोकरंजनं। भगवत भक्ति हीनस्य, वह मनुष्य जो भगवत भक्ति से हीन है, जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं है, जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, जाति ही शास्त्रम जपह तपह, बलि वो बहुत ही ऊंची जाति से उत्पन्न हुआ हो, बलि समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, जपह तपह अर्थात वो बलि जप भी करता है और तपस्या भी करता है, परंतु भगवान की भक्ति से हीन है, तो कहते हैं अप्राणस्युपह देहस्य, मत समझो कि वो जीता जागता इंसान है, अप्राणस्युपदेहस्य, वो एक चलती फिरती लाश है, ऐसी देह जिसके अंदर प्राण नहीं है, क्योंकि जो प्रेम करना नहीं जानता, अपने भगवान के साथ प्रेम नहीं करता, जो कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करता, वो शव है। ऐसे कहते हैं तुलसीदास, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। अप्राणस्युपदेहस्य, वो भले दिखने में आपको लग रहा है चल रहा है, परंतु उसके हृदय के अंदर आत्मा मर गई है। और मंडनम लोकरंजनम, मंडनम लोकरंजनम मतलब जो बाकी के सारे गुण हैं, जैसे अच्छी जाति है, जाति शास्त्रम जपह तपह, शास्त्र का ज्ञान है, जप भी करता है, तपस्या भी करता है, ये सारे जितने भी उसके गुण हैं, वो सब एक मृत शरीर के ऊपर आभूषणों का बाहर है। जैसे एक मृतिक शरीर हो, उसको शमशान की ओर लेकर जाया जा रहा है और उसको अत्यंत ही सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया जाए तो क्या लाभ। उसी प्रकार कलयुग में जितने भी लोग होंगे, अगर उनके अंदर दूसरे कोई गुण होते भी हैं, जैसे भले वो सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, तथाकथित जब भी कर लेते हैं, कुछ तथाकथित तपस्या भी कर लेते हैं, परंतु यदि जब भगवान की प्रीति समाप्त हो जाती है, भगवत भक्ति हीनस्य, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करता है, वो सब अप्राणस्य उपदेहस्य, वो समझो चलती फिरती लाश के समान है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं जीवों के हृदय से दया समाप्त हो रही है और प्रेम समाप्त हो रहा है, भगवान की भक्ति का ह्रास हो रहा है। और भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में कलयुग की शुरुआत से ही 8 प्रमुख चीजों का घटन होता जाएगा, ऐसे विषय में बताया गया है। और कहा गया है भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है, तत्पश्चानुदिनं धर्मं सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नंक्षत आयुर्बलं स्मृति। कि जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा, प्रतिदिन दिनम हर क्षण एक एक दिन करके लोगों के अंदर ये 8 चीजों की कमी होती जाएगी, ऐसे बताया। तत्पश्चानु दिनम धर्मम, सबसे पहले धर्म का ह्रास हो जाएगा। वास्तविक धर्म है जीव का कृष्ण से प्रेम करना, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। और तवै पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति अधोक्ष से, अगर हमारा परो धर्म कोई है तो भगवान की भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है। परंतु जैसे जैसे कलयुग का आगमन होता जा रहा है, हमारे हृदय से धर्म समाप्त हो रहा है। धर्मम सत्यम, और सत्य खत्म होता जा रहा है। जीव का वास्तविक स्वरूप है सत्य बोलना और सत्य को स्वीकार करना, परंतु कलयुग का जीव सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि सत्य एक कृष्ण है और कृष्ण को स्वीकार करना कितना कठिन है। लोग बहुत सारी संप्रदायों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, करोड़ों देवताओं के चरणों में माथा रगड़ने के लिए तैयार हैं, एक कृष्ण की ओर आकर्षित ही नहीं होते, एक कृष्ण के नाम की ओर आकर्षित नहीं होते। भगवान का नाम अगर किसी को कहने के लिए बोला जाता है तो लोग के मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं है, पूरा दिन बोलते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो बोलेंगे ये थोड़े ना भगवान है, कृष्ण का नाम नहीं निकलता उनके मुख से, तो सत्य नहीं निकलता। और आगे शौचम, अर्थात पवित्रता नष्ट हो जाती है, कोई पवित्र हृदय नहीं रहता, पवित्र आचरण नहीं रहता, पवित्र शरीर नहीं रहता। और क्षमा दया, क्षमा का मतलब होता है सहनशीलता, जैसे अगर कोई किसी के साथ कुछ भी अनजाने में बुरा हो जाए तो उसको कभी क्षमा नहीं करते। आजकल ऐसा होता है, नहीं उसने मुझसे 10 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मतलब क्षमा हृदय से निकल जाती है, सहनशीलता नहीं रहती है। ऐसा नहीं रहता कि चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है अगर उसने मुझे कहा भी था, लेकिन नहीं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं और भी जख्म गहरा हो जाता है, और फिर कैसे मैं उससे बदला लूं, तो क्षमा खत्म हो जाती है, हृदय से दया का नाश हो जाता है। और आयुर्बलम स्मृति, जिसके कारण आयु खत्म हो जाती है, क्योंकि जलता रहता है जीव तो फिर उसकी आयु का नाश होता है, कम आयु अब कितनी थोड़ी रह गई है जीव की। और बल, कोई बल नहीं रहता, थोड़ा सा काम भी जिसमें शक्ति चाहिए होती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है। और स्मृति, यादाश्त तो इतनी सुंदर है आज के जीव की कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि मैं आया क्यों हूँ, या इतनी आराम यहाँ पर आई हूँ कुछ लेने के लिए। तो ये है स्मृति का हाल, ये है आयु का हाल। तो जैसे जैसे कलयुग, अभी तो प्रथम चरण है, यानी कि अभी कलयुग जस्ट आया है और ये तो एकदम गोल्डन युग है। इसमें भी हम देखते हैं कि ये सारी चीजों का ह्रास हो रहा है, धर्म नहीं रहा, सत्यता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, शौच क्षमा दया स्मृति आयु सब समाप्त हो रहे हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, कितनी घिनौनी, कितनी भयानक स्थिति हो जाएगी कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो उस समय अपराध इतने बढ़ जाएंगे कि भगवान के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा, समस्त लोगों का सर्वनाश करेंगे, जितने भी लोग हैं। ऐसा आता है, कल की पुराण में लिखा है कि भगवान एक घोड़े पर सवार होके आएंगे हॉर्स के ऊपर, और घोड़े का नाम होगा देवदत्त। उनके हाथ में एक तलवार होगी और वो इतना तेजी से, तेज गति से उसको घुमा रहे होंगे, कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। और समस्त जितने भी क्षत्रिय राजा होंगे, जो है ना प्रजा का शोषण कर रहे होते हैं, अत्याचार करेंगे, उन सबका विनाश हो जाएगा। और जब सारे दुष्ट समाप्त हो जाएंगे, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाएगा। और उस समय, क्योंकि पृथ्वी इतनी अपवित्र हो गई होती कि भगवान के आने के बाद भी किसी के अंदर भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं उत्पन्न होता है, फिर क्या होता है, जब सारे असुरों का नाश हो जाएगा ना, उसके बाद भगवान के चरणों पे जो चंदन का लेप लगा हुआ है, और भगवान ने जो सुंदर वनमाला धारण की हुई है, भगवान के चरणों पे रखे हुए तुलसी दल का, उन सब की सुगंध बिखरने लगेगी वायु में। और वायु में जो वातावरण इतना दूषित था, वो पवित्र होने लगेगा। और इसके बाद, क्योंकि सारी प्रजाजन, जितने भी राजा वगैरह होते थे, वो तो नष्ट हो जाएंगे, जितने भी अपराधी, और जो थोड़ी सी प्रजा, बहुत ही थोड़े लोग जो इधर उधर है ना बच गए होंगे, और है ना थोड़ा, क्योंकि अब प्रचार तो हो ही नहीं रहा है। चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी का ये जो आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, वो तो 10,000 साल के बाद समाप्त हो जाएगा, फिर प्राचारिक होंगे नहीं, तो फिर उनको खबर नहीं होगी कि भक्ति कैसे करनी है। लेकिन फिर भी वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैसे ही नेचुरली सात्विक होंगे, तो फिर उन तक जब भगवान की इन चंदन के, वनमाला के, तुलसी के सुगंध जब वातावरण में जाएगी, और एक बहुत ही सुंदर शीतल रम्य और मधुर पवन जब इस सुगंध को लेकर लोगों तक जाएगी, और लोगों की नासिका तक जब ये सुगंध आएगी, तो उस सुगंध को सूंघ कर लोगों को, जो बाकी थोड़े से बच्चे होंगे ना, उनको भगवान का अनुभव होगा, कि क्योंकि कितना पवित्र वो भगवान की है ना, पवित्र वातावरण पवित्र हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा, और भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और जो बाकी के जितने भी सात्विक जीव बचे होंगे ना, तो क्योंकि भगवान अपने कार्य को, कल की भगवान अपने कार्य को समाप्त करेंगे, उसके बाद सत्युग स्टार्ट होगा, क्योंकि कलयुग तो एंड हो जाएगा ना, फिर जैसे सत्युग स्टार्ट होगा, ऐसे इंस्टेंट नहीं होगा, धीरे 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 कलयुग जैसे समाप्त होगा और फिर सत्युग का आगमन होगा, तो ये जो लोग जितने थोड़े से रह गए हैं, वो क्योंकि इतने पवित्र हो जाएंगे कि उनके हृदय में कुछ भी दुर्वासना नहीं रहेगी, फिर वो सत्योगुण में आ रहे। अब कोई कोई जगहों पे क्या होता है कि कलयुग के बाद प्रलय आती है, लेकिन ज्यादातर प्रलय नहीं आती, बस ये चतुर्युग तो ऐसे, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कैसे बताया, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा, सत्य त्रेता द्वापुर तथा कलयुग, इन चार युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। अब मास चक्र क्या होता है, जैसे अभी है ना कार्तिक मास समाप्त हो गया, हम लोगों को कुछ देखने में तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा ना, दिन वैसे ही आ रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन महीना खत्म हो गया और फौरन से दूसरा महीना शुरू हो गया ना, तो इसी तरह से क्या होता है कि कलयुग खत्म हो जाता है और उसी तरह से वापिस से सत्ययुग शुरू हो जाता है, उस तरह उसके बाद वापिस त्रेता शुरू हो जाता है, ऐसे डायरेक्ट से हो रहा होता है। जरूरी नहीं है कि उसके बीच में प्रलय भी हो, लेकिन कभी कभी छोटी प्रलय होती है और युग समाप्ति के बाद, लेकिन ये ऐसा है कि बस जैसे कहीं पर है ना बहुत ज्यादा बारिश हो गई और वहां पर जैसे थोड़ा सा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया और तबाही हो जाती है, और फिर से वो गांव है ना वापस से, इतना मतलब बड़ा प्रलय नहीं होता। वास्तविक जो बड़ा प्रलय होता है ना, वो कब होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हैं और एक मनु की मनो के अंदर है ना 71 बार चक्र योग आता है, तो इतनी दफा प्रलय नहीं होता, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है ना, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, फिर महाप्रलय आती है। जय देव गोस्वामी। अपनी दशा अवतार की प्रार्थना में कल की अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, म्लेच्छ निवहनिदने कलयं करवालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्, केशवधिरिता कलकिशरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधिरिता कलकिशरीरा। जय जगदीश हरे। और वो कहते हैं धूम के तुम्हें वह केम अपी करालम, यानी कि जब देखेंगे भगवान कि इतना अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर और इतना अधर्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि केवल अधर्म ही दिखेगा संसार में, तो भगवान के अंदर से, भगवान का जो ये कल की अवतार है ना, उसके अंदर से मर्सी समाप्त हो जाएगी। और विदाउट मर्सी धूमकेत, यानी कि अपनी तलवार को विदाउट मर्सी इतना जोर जोर से घुमाएंगे कि जिसकी कटती है कटे, क्योंकि हर जगह राक्षस होंगे, हर जगह असुर होंगे, हर जगह अत्याचारी होंगे, हर जगह ऐसे शोषण करने वाले रक्षक ये भक्षक बने हुए होंगे, तो भगवान सबको समाप्त करने के लिए आएंगे। बस मतलब एटलीस्ट थोड़े से बचेंगे, सारे सब लोग जीव समाप्त नहीं होंगे, लेकिन तकरीबन जितने भी अधर्मी हैं वो सबको भगवान नाश करेंगे। वैसे इस कल्कि अवतार के विषय में भागवतम में भी आता है, लेकिन कल्कि पुराण में उसके विषय में बहुत ज्यादा बताया गया है। ये कल्कि पुराण जो है वो उप पुराण है। उप पुराण का क्या मतलब होता है, जैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे ना, वो मेन है, ये मेन पुराण है, लेकिन उनमें से ही ना बाकी उप पुराण होते हैं, निकलते हैं, जैसे कल्कि पुराण है। अब उसमें भी बताया गया है कल्कि अवतार के विषय में थोड़ा है ना, कि कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यशा होगा, माता का नाम सुमति होगा, उसके 4 भाई होंगे जो कि उनकी सहायता के लिए होंगे। और इसमें बताया गया कि जिस जब देवता अक्षीण दक्षिण विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब किसकी किसका इंतजार कर रहे हो आप, इतना ज्यादा अपराध, क्योंकि आप कहते हो कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा, और इससे ज्यादा और क्या धर्म की हानि होगी, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय धर्म नाम का भी नहीं बचा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं गिरो न यत्र, कि किसी के मतलब मुंह से धर्म की या भगवान की कोई बात भी नहीं निकलती, तो अब कब लोगे अवतार। फिर उस समय भगवान विष्णु जो क्षीरोदशा विष्णु है, वो देवताओं को सांत्वना देते हैं कि अब आप चिंता मत करो, मैं विष्णु यशा के घर पे अवतार लूंगा, संबल ग्राम में मेरा जन्म होगा, और आप सब मेरी लीला में सहायता करना। और जिस समय ऐसा भी वहां पर कल के पुराण में लिखा हुआ है कि जिस समय ये कल्कि अवतार हुआ था, उस समय वो भी विष्णु रूप में अवतरित हुए थे, यानी 4 उनके बाजू थे और 4 भुजाओं के साथ थे ना वो उत्पन्न हुए थे, और उनको आशीर्वाद देने के लिए उस समय परशुराम, वेद व्यास जी, कृपाचार्य ये सब आए थे, क्योंकि ये चिरंजीवी हैं, वो सब आए थे। और वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन उनका अवतार हुआ था। और जब ब्रह्मा जी जब आए थे उनकी स्तुति करने के लिए उस समय, तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे ये तो 4 हाथ वाला विष्णु आ गया है, सब लोग देखेंगे तो है ना ये सही नहीं होगा, तो फिर ब्रह्मा जी ने पवन देव को कहा कि आप भगवान से निवेदन कीजिए कि कृपया अपने 4 भुजाओं को हटाकर 2 भुज बन जाइए। तो उस समय है ना पवन देव ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान द्विभिज हो गए। उस समय हालांकि विष्णु यशा और सुमति देवी ने भगवान को चार भुजाओं में देख लिया था, लेकिन भगवान की योग माया के कारण, भगवान की योग माया ने इन सबको भ्रमित कर दिया और भ्रमित होने के बाद वो भूल गए कि कभी हमने भगवान के चार हाथ भी देखे थे। वो अपने बच्चे की तरह भगवान के कल के अवतार को पैदा हुए थे जो छोटे थे, पालने लगे और फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद उनको गुरुकुल में भेजा शिक्षा हासिल करने के लिए। और शिक्षा गुरुकुल में गए तो फिर परशुराम से उनकी भेंट हुई, क्योंकि उनके गुरु महाराज जो है वो परशुराम है। और परशुराम जो है उन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया इनका, और बहुत ही जल्दी इन्होंने समस्त जितने भी और उनको कहा, परशुराम ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप स्वयं भगवान हैं, यहीं पर रहिए, मैं आपको वेदों और वेदों का समस्त ज्ञान भी दूंगा और युद्ध कला भी सिखाऊंगी, क्योंकि और बहुत ही शीघ्र आप समस्त जितनी भी विद्याएं हैं, क्योंकि आप तो वैसे ही सर्वज्ञ हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे आपकी गुरु की भूमिका निभानी है, तो मैं आपको अत्यंत ही सुंदर तरीके से ये सब सिखाऊंगा। और शीघ्र ही कल्कि भगवान जो है वो परशुराम से बहुत सारी विद्या और समस्त जितना भी शस्त्र विद्या है वो सब सीख जाते हैं। और सारी विद्या सीखने के बाद भगवान कल्कि परशुराम से पूछते हैं कि गुरुजी मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तब परशुराम जी कहते हैं कि आप जो कार्य करने वाली है ना वही मेरी दक्षिणा है, क्योंकि उनका स्वभाव भी सेम ही था, क्योंकि परशुराम भी अत्याचारियों का है ना विनाश करने में आनंदित होते थे, क्योंकि वो भी उनका भी अवतार भगवान की शक्ति अवतार थे, उनका भी यही प्रयोजन था। और क्योंकि कल्कि अवतार भी अब उसी प्रयोजन से आए, तो बोला कि जब आप इन समस्त को नाश करोगे ना जितने भी अपराधी हैं, तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। शिक्षा पूरी करने के बाद पुनः वो अपने ग्राम में जाते हैं और उनके पिता और माता जी उनका विवाह करवाते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है पद्मा, तो पद्मा के साथ उनका विवाह होता है। परंतु समय थोड़ा बीतता है और जब देखते हैं वो कि हर जगह अपराध होता है, हर जगह अपराध ही अपराध होता है, तो फिर वो है ना उनके माता पिता और उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, बस फिर अपनी तलवार उठाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और विनाश कार्य आरम्भ करते हैं। और जब सबका विनाश, जितने भी अपराधी हैं उनका विनाश हो जाता है, उसके बाद जितने भी थोड़े बहुत ब्राह्मण स्वभाव के लोग रहते हैं, वो जब उनके आने का और उनकी सुगंध, जैसे मैंने बताया कि चंदन की या फिर वनमाला या तुलसी की सुगंध जब उनकी नासिकाओं तक पहुंचती है, तो उनके हृदय के अंदर इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अपवित्रता समाप्त हो जाती है और हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है, और उसके बाद सत्युग का आरंभ होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।